एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सब की जिंदगी से जुड़ी हुई है, प्रिया पारकर की दी आर्ट ऑफ गैदरिंग, मतलब सभा की कला।
हाँ बिल्कुल, और ये आप देखें तो सिर्फ बड़ी बड़ी पार्टियों या कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है।
हाँ हाँ,
ये किताब हमारी हर तरह की मुलाकातों पर लागू होती है, चाहे वो ऑफिस की छोटी सी मीटिंग हो, दोस्तों के साथ बस यूं ही चाय पीना हो, या फिर परिवार का कोई गेट टुगेदर।
सही।
मुद्दा ये है कि हम अक्सर मिलते तो हैं, पर क्या वो मिलना वाकई यादगार या मतलब सार्थक होता है?
सही कहा, आजकल हम इतने कनेक्टेड हैं फोन पर, ऑनलाइन, पर फिर भी वो एक डिस्कनेक्शन सा महसूस होता है।
बिल्कुल।
और ज्यादातर गैदरिंग्स या तो बोरिंग होती है या बस लगता है कि यार टाइम वेस्ट हो गया।
प्रिया पारकर इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करती हैं। वो बताती हैं कि कैसे थोड़ी सी सोच और इरादे से हम अपनी मुलाकातों को बदल सकते हैं, उन्हें ज्यादा असरदार, ज्यादा यादगार बना सकते हैं।
तो चलिए समझते हैं प्रिया पारकर और उनके नजरिए को थोड़ा और। वो कोई आप कहें आम इवेंट प्लानर नहीं है,
नहीं,
वो एक मास्टर फैसिलिटेटर है। मतलब वो लोगों को बेहतर ढंग से बातचीत करने और साथ काम करने में मदद करती हैं।
अच्छा,
साथ ही वो एक रणनीतिक सलाहकार भी हैं और थ्राइव लैब्स की संस्थापक भी हैं। उनकी खासियत है ग्रुप डायनामिक्स में।
ग्रुप डायनामिक्स यानी समूह कैसे बर्ताव करते हैं,
हाँ बिल्कुल, और संघर्ष समाधान में भी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जिसे कहते हैं।
और उनका अनुभव भी तो कमाल का है, मैंने पढ़ा 15 साल से ज्यादा।
हाँ, दुनिया की टॉप कंपनियों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यहां तक कि शांति वार्ताकारों के साथ काम किया है उन्होंने।
जी,
हार्वर्ड MIT से पढ़ाई की है, और दिलचस्प बात यह भी है कि उनकी माँ भारतीय और पिता अमेरिकन।
हाँ, वो मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड उनको एक अलग पर्सपेक्टिव देता है।
बिल्कुल, अलग अलग संस्कृतियों में मेलजोल के तरीकों की गहरी समझ होगी उन्हें।
एकदम, और यही चीज उनके काम को खास बनाती है, वो जैसे मनोविज्ञान, रणनीति और जो सामाजिक रस्में होती हैं,
हाँ
उन सबको मिलाती हैं। उनका फोकस खाने पीने या सजावट पे उतना नहीं है।
अच्छा,
आमतौर पर तो होस्ट यही सोचते हैं,
हाँ
पर उनका फोकस है कि इंसानी जुड़ाव को कैसे डिजाइन किया जाए ताकि सभा का जो असली मकसद है वो पूरा हो। वो कहती है कि अच्छी सभा आयोजित करना एक लीडरशिप स्किल है, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
लीडरशिप स्किल, ये इंटरेस्टिंग है। तो किताब का निचोड़ क्या है, क्या कहती है किताब बेसिकली?
देखिए, ये एक तरह से गाइडबुक है जो हमें सिखाती है कि सभाओं को सिर्फ लॉजिस्टिक्स, मतलब क्या, कहाँ, कब,
हाँ तैयारी,
हाँ, उस नजरिए से देखना बंद करें। पाकर कहती हैं कि ज्यादातर सभाएं इसलिए फीकी रह जाती हैं क्योंकि हम सबसे जरूरी सवाल पूछते ही नहीं।
कि हम इकट्ठा हो क्यों रहे हैं।
हम इकट्ठा क्यों रहे हैं, उसका क्यों क्या है? उनका मूल तर्क यही है कि सभा की सफलता उसके क्यों यानी मकसद पर टिकी होती है। हम अक्सर क्या, एक्टिविटी क्या होगी और कैसे, जगह कैसी होगी, खाना क्या होगा,
हाँ इसी में उलझे रहते हैं।
बिल्कुल, और क्यों भूल जाते हैं। पारकर हमें ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलने को कहती हैं, मतलब बिना सोचे समझे पुरानी रीतियों को दोहराना बंद करें।
ओके, तो हल क्या है फिर, अगर ऑटो पायलट पे नहीं चलना तो?
हल ये है कि मेजबान को सिर्फ चिल होकर साइड में नहीं खड़ा रहना।
हाँ, जो आजकल बड़ा ट्रेंड है, बी ए चिल होस्ट।
हाँ, वो कहती हैं कि ये जिम्मेदारी से भागना है। मेजबान को एक सक्रिय भूमिका निभानी है, जिसे वो एक नाम देती हैं, उदार अधिकार, जनरस अथॉरिटी।
उदार अधिकार, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है, अधिकार और वो भी उदार।
हाँ है, इसका मतलब है मेहमानों के भले के लिए, सभा के मकसद को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति का, अपने अधिकार का नैतिक रूप से इस्तेमाल करना।
हिम्मत से फैसले लेना,
जैसे कि
किसे बुलाना है, किसे नहीं, बातचीत कैसे चलेगी, उसका फ्लो क्या होगा, माहौल कैसा बनेगा, ये सब तय करना। वो कहती हैं एक तरह से हर सभा एक अस्थाई अलग दुनिया बनाने जैसा है, एक टेम्प्ररी ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड।
वाह, अस्थाई अलग दुनिया, ये तो बहुत पावरफुल आइडिया
है ना? तो चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा और खोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला और बुनियादी कदम, असल मकसद क्या है, अध्याय एक।
है।
पारकर कहती हैं सिर्फ बर्थडे पार्टी या टीम मीटिंग कहना काफी नहीं है, ये तो बस कैटेगरी है, मकसद नहीं।
मतलब
मकसद और स्पेसिफिक होना चाहिए।
हाँ बिल्कुल, और सिर्फ स्पेसिफिक नहीं, बल्कि ऐसा जो थोड़ा वो शब्द इस्तेमाल करती हैं, विवादास्पद।
विवादास्पद मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल, झगड़े वाला।
नहीं नहीं, झगड़े वाला नहीं, विवादास्पद का मतलब है कि वो इतना साफ हो, इतना नुकीला हो कि ये भी पता चले कि ये सभा किस बारे में नहीं है।
अच्छा, ओके।
उदाहरण के लिए जैसे वो कहती हैं, सिर्फ बेबी शावर नहीं, ये तो कैटेगरी हो गई।
हाँ।
मकसद हो सकता है पहली बार माँ बन रही मेरी दोस्त थोड़ी घबराई हुई है, तो उसे अनुभवी माओं के मजेदार किस्सों और प्रैक्टिकल सलाह से हौसला देना।
अरे वाह, अभी कितना क्लियर है,
है ना?
हाँ।
अब इससे एकदम साफ हो जाता है कि किसे बुलाना है, क्या बातें करनी है, माहौल कैसा रखना है, मकसद सब कुछ ड्राइव करेगा।
ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। अच्छा, मकसद साफ हो गया, फिर आता है किसे बुलाएं और किसे नहीं, अध्याय दो। यहाँ पार्कर एक बहुत दिलचस्प बात कहती है, उदार बहिष्करण, जेनरस एक्सक्लूजन।
हाँ,
ये सुनने में और भी अजीब लगता है, बहिष्करण यानी एक्सक्लूजन और वो भी उदार, मतलब क्या इसका?
हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, मैं मानता हूँ, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि भाई सबको शामिल करना अच्छी बात है, इंक्लूसिविटी।
हाँ वही तो।
लेकिन पार्कल का तर्क है कि अगर सभा का मकसद बहुत खास है, बहुत फोकस्ड है, तो उसे पूरा करने के लिए जरूरी है कि सिर्फ वही लोग शामिल हों जो उस मकसद से सीधे जुड़े हों। बाकी लोगों को ना बुलाना उन लोगों के लिए या सभा के लिए बुरा नहीं है, बल्कि ये सभा की क्या कहते हैं, इंटेग्रिटी और फोकस बनाए रखने के लिए जरूरी है।
ओके, तो ये किसी को नीचा दिखाना नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये मकसद के प्रति ईमानदार रहना है, और मेहमानों की संख्या भी मकसद के हिसाब से तय होनी चाहिए, कम लोग या ज्यादा लोग।
ठीक है, ये बात समझ आ रही है, थोड़ी मुश्किल है लेकिन लॉजिकल है। मकसद तय, मेहमान तय। अब मेजबान की भूमिका, आपने कहा चिल होस्ट नहीं बनना है बल्कि उदार अधिकार का इस्तेमाल करना है, अध्याय तीन। पर इसमें थोड़ा डर नहीं है कि मेजबान कहीं ज्यादा कंट्रोलिंग या बॉस जैसा ना लगने लगे?
ये बहुत वैलिड पॉइंट है, और पार्कर भी मानती हैं कि ये एक यू नो फाइन बैलेंस है।
हाँ,
उदार अधिकार का मतलब तानाशाही नहीं है, बल्कि मेहमानों के अनुभव की जिम्मेदारी लेना है।
अब सोचिए, अगर आप किसी पार्टी में बोर हो रहे हो, होता है अक्सर।
हाँ, या कोई एक ही इंसान पूरी बातचीत पर हावी हो, तो क्या आप मन ही मन मेजबान से उम्मीद नहीं करते कि वो कुछ करे?
बिल्कुल करते हैं, लगता है कोई संभाले सिचुएशन को।
बस उदार अधिकार का मतलब यही है, मेहमानों को बोरियत से बचाना, सबको शामिल होने का मौका देना, उन्हें एक दूसरे से और मकसद से जोड़ना। इसके लिए जरूरत पड़ने पर दखल देना, बातचीत को दिशा देना और शायद कुछ नियम तय करना भी शामिल है।
नियम जैसे?
जैसे शायद आज हम पॉलिटिक्स पर बात नहीं करेंगे, या सबको बोलने का बराबर मौका मिलेगा। ये सब मेहमानों के भले के लिए ही है।
यानी मेजबान का काम सिर्फ मुस्कुराना और खाना परोसना नहीं है, बल्कि उस पूरे अनुभव को एक्टिवली बनाना है। अच्छा, और जगह के बारे में क्या? अध्याय चार, क्या जगह भी इतनी मायने रखती है?
बहुत ज्यादा। पार्कर कहती हैं कि जगह सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो हमारे व्यवहार को आकार देती है। आप सोचें, एक फॉर्मल बोर्ड रूम में लोग अलग तरह से बात करेंगे।
हाँ बिल्कुल, सीधे होकर।
और किसी के घर के लिविंग रूम में एकदम अलग, ज्यादा रिलैक्स्ड।
सही।
तो हमें ऐसी जगह चुननी चाहिए या उसे ऐसा बनाना चाहिए जो हमारे मकसद और मनचाहे माहौल को सपोर्ट करे। कभी कभी जगह बदलना, जैसे मीटिंग को ऑफिस के बजाय पार्क में करना।
हाँ।
या कमरे का फर्नीचर थोड़ा इधर उधर करना भी लोगों के बातचीत करने के तरीके को बदल सकता है। मकसद है एक ऐसी अस्थाई अलग दुनिया बनाना जहां लोग रोजमर्रा के ढर्रे से, रूटीन से बाहर निकल सकें।
ये हुई बात। अच्छा, और शुरुआत? अक्सर हम मीटिंग में सीधे काम की बात पर आ जाते हैं, या पार्टी में हेलो के बाद सीधे खाने पीने की बात होने लगती है। पार्कर का इस पर क्या कहना है?
अध्याय पांच, वो कहती हैं कभी भी लॉजिस्टिक्स से शुरू ना करें, वो शुरुआती पल वो बहुत कीमती होते हैं।
क्यों?
क्योंकि ये मेहमानों को बाहरी दुनिया से, उनकी भागदौड़ से निकालकर सभा की खास दुनिया में लाने का मौका होते हैं। इसे वो कहती हैं देहरी पार करना, क्रॉसिंग द थ्रेशहोल्ड।
अच्छा,
वाईफाई पासवर्ड क्या है या बाथरूम किधर है ये बताकर शुरुआत करना, मतलब वो सुनहरा मौका गंवा देना है।
तो अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है?
कुछ भी जो विचारशील हो, एक वार्म वेलकम, एक छोटी सी साझा रस्म, जैसे सब मिलकर कुछ कहें या करें, या एक ऐसा सवाल जो सबको तुरंत मकसद से जोड़ दे, कुछ भी जो माहौल सेट करे।
ये दिलचस्प है, तो मतलब पहले कनेक्शन फिर कंटेंट।
बिल्कुल। अच्छा, और बातचीत के दौरान क्या सब कुछ हमेशा आरामदायक और सहमति वाला होना चाहिए? पार्कर गुड कंट्रोवर्सी या अच्छी बहस की बात करती हैं। अध्याय 7, इसका क्या मतलब है?
हाँ, ये भी सुना, अच्छी बहस। बहस तो अच्छी कैसे हो सकती है?
हाँ, उनका मानना है कि सबसे यादगार और फायदेमंद सभाओं में अक्सर थोड़ी गर्मी होती है। हीट,
गर्मी
मतलब टेंशन, पर प्रोडक्टिव टेंशन मतलब विचारों का स्वस्थ टकराव। ये जरूरी नहीं कि सब एक दूसरे से सहमत हों, बल्कि अलग अलग नजरियों के टकराने से ही तो नए आइडियाज निकलते हैं और समझ गहरी होती है।
लेकिन लोग झगड़ने लगे तो?
यही मेजबान का रोल आता है। मेजबान का काम है ऐसा सुरक्षित माहौल बनाना जहां लोग बिना झिझक, बिना पर्सनल हुए अपने अलग विचार रख सकें और उन पर स्वस्थ बहस हो सके। पार्कर इसे प्रोडक्टिव असहजता, प्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट, अध्याय 6-8 भी कहती हैं।
प्रोडक्टिव असहजता मतलब ऐसी बेचैनी जो फायदेमंद हो।
हाँ, जो हमें आगे बढ़ाए, कुछ नया सिखाए। ये झगड़ा पैदा करना नहीं है, बल्कि उद्देश्य के लिए अलग अलग विचारों की जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल करना है।
ठीक है, ये भी एक नया नजरिया है। और अंत, सभा खत्म कैसे होनी चाहिए? अध्याय 9, अक्सर पार्टियां या मीटिंग्स बस धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। लोग एक एक करके निकलने लगते हैं, कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं होती।
हाँ, और पार्कर कहती है ये भी एक गंवाया हुआ मौका है। जैसे शुरुआत जरूरी है, वैसे अंत भी जरूरी है। एक अच्छा समापन मेहमानों को उस अनुभव को समेटने में मदद करता है।
अच्छा।
वो जो कनेक्शन बने, जो बातें हुई, उनको याद रखने में मदद करता है और फिर वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जाने में भी मदद करता है। इसमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना शामिल हो सकता है, हमने क्या पाया, क्या सीखा।
अच्छा।
और थोड़ा आगे देखना भी, अब क्या यहाँ से क्या लेकर जा रहे हैं। ये कोई छोटी सी समापन रस्म हो सकती है, या सब लोग अपनी एक एक मुख्य सीख साझा कर सकते हैं, या एक आखिरी टोस्ट हो सकता है। मकसद है एक स्थायी प्रभाव छोड़ना, न कि बस अचानक सब खत्म कर देना।
वाह, ये तो पूरी जर्नी है, शुरुआत, बीच का हिस्सा और अंत, सब कुछ सोच समझ कर। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो कुछ मुख्य संदेश क्या उभर कर आते हैं? मेरे लिए तो सबसे पहला है मकसद, मकसद, मकसद। हर चीज क्यों से शुरू होनी चाहिए, वो क्यों ही राजा है।
बिल्कुल। दूसरा, मेजबान की जिम्मेदारी चिल नहीं बल्कि उदार अधिकार का इस्तेमाल करके मेहमानों के अनुभव को सच में अच्छा बनाना, एक्टिव रोल लेना।
हाँ। तीसरा, वो थोड़ी मुश्किल लगने वाली बात, सार्थक बहिष्करण, मतलब मकसद के लिए सही लोगों को चुनना, भले ही सबको ना बुला पाए, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी शायद
कह सकते हैं। चौथा, सभाएं यानी अस्थाई अलग दुनिया है। हर सभा एक मौका है कुछ खास बनाने का, रूटीन से हटकर।
और पांचवा, शुरुआत और अंत पर खास ध्यान देना, अनुभव को एक फ्रेम देना, उसे यादगार बनाना।
बिल्कुल। और छठा, अच्छी बहस या प्रोडक्टिव असहजता को डरने के बजाय गले लगाना, क्योंकि वहीं से ग्रोथ होती है, नए विचार आते हैं।
और इन सब के पीछे जो एक बड़ी सोच है वो ये कि सभा आयोजित करना सिर्फ इंतजाम करना नहीं, बल्कि एक कला है,
एक क्राफ्ट है।
हाँ
हाँ, एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। और इस कला का, इस स्किल का मूल मंत्र है इरादा, इंटेंशनैलिटी, हर चीज सोच समझकर उद्देश्य के साथ करना।
किताब में कुछ पंक्तियां भी बड़ी यादगार हैं, कौन सी आपके दिमाग में एकदम बैठ गई?
एक तो वही, एक कैटेगरी उद्देश्य नहीं होती।
सही।
ये इतनी सिंपल सी बात है, पर कितनी गहरी है। ये याद दिलाता है कि हमें सतही लेवल से आगे जाकर सोचना है।
सही।
और दूसरी, उदार अधिकार का अभ्यास करें। ये मेजबान की भूमिका को एकदम नया मतलब देती है, कंट्रोलिंग नहीं, केयरिंग।
हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आई, सभाएं अस्थाई वैकल्पिक दुनियाएं होती हैं। ये सभा को एक, क्या कहूं, जादुई एहसास देता है, लगता है कि कुछ स्पेशल हो रहा है।
बिल्कुल।
और ये भी, जिस तरह हम इकट्ठा होते हैं उसी तरह हम जीते हैं। ये दिखाता है कि हमारी सभाएं हमारे समाज का, हमारी वैल्यूज का आईना है।
और वो वाली, सार्थक समावेश के लिए सोच समझ कर बहिष्करण जरूरी है। ये समावेशिता के हमारे आम आइडिया को चैलेंज करती है और सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमेशा ज्यादा लोग बेहतर होते हैं।
बिल्कुल। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? ऑफिस मीटिंग्स में क्या करें? कोई प्रैक्टिकल टिप?
हाँ बिल्कुल। ऑफिस मीटिंग में एजेंडा भेजने से पहले खुद से और टीम से पूछें, इस मीटिंग का असली, स्पेसिफिक, डिस्प्यूटेबल मकसद क्या है। सिर्फ Q3 प्लानिंग नहीं
तो क्या?
शायद Q3 के लिए टॉप 3 सबसे जोखिम भरे लेकिन सबसे ज्यादा फायदेमंद पहलुओं पर आम सहमति बनाना। देखिए ये कितना क्लियर है।
हाँ, एकदम।
फिर सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाएं जिनका होना उस मकसद के लिए बिल्कुल जरूरी है, बाकियों को बाद में अपडेट दे सकते हैं। और मीटिंग की शुरुआत भी सीधे एजेंडा पे कूदने के बजाय दो मिनट लेकर मकसद को दोहराएं या एक छोटा सा सवाल पूछें जो सबको उस मकसद से जोड़ दे।
और घर पर मान लीजिए दोस्तों को डिनर पर बुला रहे हैं,
तो सिर्फ डिनर विद फ्रेंड्स मत सोचिए, सोचिए क्यों बुला रहे हैं। क्या किसी दोस्त का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है और उसे चीयरअप करना है? क्या दो ऐसे दोस्तों को मिलवाना है जो एक दूसरे के काम आ सकें, या सिर्फ हंसी मजाक करना है?
हाँ,
ये क्यों तय करेगा कि आप किसे बुलाएंगे, शायद खाने में क्या रखेंगे, अगर किसी को चीयरअप करना है तो शायद कम्फर्ट फूड, और बातचीत शुरू करने के लिए कोई मजेदार सवाल भी सोच सकते हैं, या शायद आप नो फोन ऑन टेबल जैसा नियम भी बना सकते हैं ताकि लोग सच में एक दूसरे से बात करें।
हाँ, ये मुश्किल होगा आजकल। अच्छा, पारिवारिक समारोहों में भी ये काम आ सकता है, वो तो अक्सर बहुत रस्म अदायगी वाले होते हैं।
बिल्कुल आ सकता है, अक्सर परिवार बस मिल लेता है, वही पुरानी बातें होती हैं। लेकिन अगर मकसद तय हो, जैसे इस बार हम सब मिलकर दादी नानी की कोई पुरानी कहानी रिकॉर्ड करेंगे, या हम सब मिलकर अपना फैमिली ट्री अपडेट करेंगे,
अरे वाह,
तो वो मिलना ज्यादा फोकस्ड और यादगार बन सकता है, कुछ नया निकल कर आएगा।
और ऑनलाइन मीटिंग्स वो तो सबसे ज्यादा थकाऊ होती हैं आजकल।
मैं तो ये सिद्धांत और भी ज्यादा जरूरी है, वर्चुअल दुनिया में ध्यान भटकना बहुत आसान है, इसलिए एकदम क्लियर मकसद, मजबूत शुरुआत और अंत, और लोगों को लगातार जोड़े रखने के लिए एक्टिव मॉडरेशन, मतलब किसी को बातचीत चलानी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है ताकि वो सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले नाम या चेहरे ना रह जाएं।
सही कहा, मेरे लिए इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे है इरादे की ताकत, इंटेंशनैलिटी। कैसे सिर्फ अपना क्यों साफ करने से और उस क्यों के हिसाब से छोटे छोटे बदलाव करने से हमारी मुलाकातों का पूरा अनुभव बदल सकता है। ये सिर्फ रस्म अदायगी नहीं है, ये सच में कनेक्शन बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है।
और मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि मेजबान की भूमिका कितनी अहम है और कितनी एक्टिव है, वो सिर्फ होस्ट नहीं बल्कि एक तरह से उस अनुभव का क्या कहें, डिजाइनर है, कंडक्टर है।
हाँ,
और हाँ, वो उदार बहिष्करण वाली बात भी सोचने पर मजबूर करती हैं। शायद हमेशा सबको खुश करने की कोशिश में हम असल मकसद से भटक जाते हैं। प्रिया पारकर हमें सिखाती हैं कि अच्छा इकट्ठा होना, मीनिंगफुल गैदरिंग, एक कला है, और अच्छी बात यह है कि हम सब इसे सीख सकते हैं।
तो शायद अगली बार जब हम किसी सभा में जाएं या किसी सभा का आयोजन करें, तो एक पल रुककर सोचें, हम यहां असल में क्यों हैं, और क्या ये सभा उस क्यों को जी रही है? क्या हम वो अस्थाई अलग दुनिया बना पा रहे हैं?
बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल पर असर बहुत बड़ा हो सकता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।